நமோ அரிஹந்தாணம் நமோ சேதாணம் நமோ ஆயர்யாணம் நமோ வஜ்ராயாணம் நமோ லோகே தௌவசாஹூனம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்தகுந்தாரியோ ஜெயந தர்மோஸ்து மங்களம் ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஞானாதன்ன கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோயம் வ்யவஹாரிணாம் அஜ்ஞானதிமிராந்தானாம் ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ சுரசுரநரபதி வந்தனே ப்ரவிநாசகாதீ கர்மணே பிரணமண கரோ தர்ம கர்த்தா ீமீரணே வழிசேஷதீசங்கே சௌசீதாஸ்தீஸ்வனி முனிஞானுகாரீரணையோகே தா பிரேகனே பந்தோழி மனுஜேத்தே வர்த்தாரி சந்தனே அரிஹந்தனே சேதனே ஜக நமஸ்கரணே கணரணேயாபோணி சர்வசாதுசமோகனே சசுஷுத்ததர்சனஜானமோக்ஷபவீதாஶ்ரமபாமினே ப்ராப்தி கருணாசாம்யநீதே நாதி சிவப்ராப்தி பலே.
யே ப்ரவசன்சார் நாமக் ஜோ சாஸ்திர ஹை உஸ் சாஸ்திர மே சாஸ்திர கே ஊபர் ஜோ திவ்ய த்வனி சார் நாமக் ஜோ குருதேவ் கே ப்ரவசன் ஹை उसके पृष्ठ क्रमांक 16 से हम ले रहे हैं. देखो अभी क्या कह रहे हैं, ये बीच में जो टाइटल है ना, चारित्र साक्षात धर्म है, चारित्र मोक्ष का कारण है. देखो हम जानते हैं कि चारित्र खलु धम्मो, यानी चारित्र ही साक्षात धर्म है. साक्षात यानी रियल, इन रियलिटी. खलु ये शब्द है ना, यानी क्या कहते हैं धर्म किसे कहना, तो चारित्र को धर्म कहना. तो चारित्र का मतलब क्या होता है, तो चारित्र तो आत्मा में जो स्थिरता है, आत्मा में जो रमणता है, वह चारित्र है. तो इसलिए क्या कहा, चारित्र यह साक्षात धर्म है और चारित्र मोक्ष का कारण है. अब क्या कहते हैं, चारित्र यह धर्म है और सम्यक दर्शन यह धर्म का मूल है. यानी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, धर्म की शुरुआत नहीं होती. चलो अब यहां तो वो बात नहीं है, सम्यक दर्शन की तो बात नहीं कह रहे, यहां तो सिर्फ चारित्र किसे कहना और चारित्र का क्या हमें उसका फल मिलता है वो बात बता रहे हैं कि चारित्र साक्षात धर्म है और चारित्र मोक्ष का कारण है. इस तरह स्वयं अपने में वर्तते हुए प्रतिज्ञा करके श्री कुंदकुंदाचार्य देव उपोद्घात करते हैं. क्या कह रहे हैं वो आचार्य, कैसे हैं, तो जो स्वयं में अपने में, स्वयं अपने में वर्तते हैं, यानी उन्हें अपने स्व का अनुभव निरंतर चल रहा है. तो ये तो शुद्धोपयोग में होंगे जब और जब छठे गुण स्थान में आएंगे तो. हाँ साहब, शुद्ध परिणति चालू है। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, जो इस तरह स्वयं अपने में वर्तते हुए, जिसको हम कहते हैं ना कंटिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट टेंस, उसको कुछ दूसरा शब्द है, हाँ प्रवर्तते हैं, लेकिन इसको मैं ग्रामेटिकल बात है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो है वो कंटिन्यूएशन में है, ऐसा जो भी आप समझ लो, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। हाँ ये मराठी में मैं बोल सकता हूँ चालू वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, अभी चल रहा है बस, तो उसको कहते हैं, जो भी कहते हैं आप समझ लेना। यहाँ तो कह रहे हैं वो वर्तते हुए, यानी उनका स्व में लीनता जो है वह कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो क्या कहा, स्वयं अपने में वर्तते हुए, ऐसे जो कुंद कुंदा आचार्य देव प्रतिज्ञा करके उपोदघात करते हैं, उपोदघात करते हैं यानी अभी शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। क्या कहा, हेय तथा उपादेय तत्व का निर्णय करना चाहिए। अब ये हेय तथा उपादेय यानी तत्व, यानी ये समझ में आया ना, जो सात तत्व है उन सात तत्वों में जो हेय तत्व है और जो उपादेय तत्व है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो हेय तत्व है तथा जो उपादेय है उनका निर्णय करना चाहिए। अभी लोग पूछते हैं हम क्या करें तो हमें सम्यक दर्शन होगा, बहुतों की ऐसी मन में इच्छा होती है कि हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि सात तत्व जो हमको बताए गए हैं, आपको जो बताए गए हैं, उसमें ही और उपादेय तत्व की पहचान करना और उसका तत्व का निर्णय करना, हमेशा कहते हैं ना तत्व निर्णय होना चाहिए, तत्व निर्णय होना चाहिए। तो तत्व निर्णय यानी क्या, जो सात तत्व है उनका ज्योंका त्यों श्रद्धान होना चाहिए। अभी हमें ज्ञान तो अवश्य हुआ है, लेकिन क्या हमने ये सात तत्व जिस तरह जाने हैं वैसे माने हैं? देखो जीव और अजीव तत्वों में अभी भी हम गड़बड़ करते हैं, चल जरा आगे ना, जीव तत्व में और अजीव तत्व में हम अभी भी मिक्सचर करते हैं, ख्याल में आया, अभी तक जीव जुदा और यह शरीर जुदा, क्या हमने यह माना है? हम अपने से पूछें, क्या आश्रव तत्व और संवर तत्व को हमने एक नहीं माना है? क्या मोक्ष तत्व का सही सही स्वरूप हमने माना है? क्योंकि हमने तो बहुत अच्छी तरह से याद किया है, किसी जीव के एक तत्व के बारे में भूल होती है तो सातों तत्वों में भूल होगी। तो जब तक हम ये शरीर जुदा है और मैं जुदा हूँ ऐसा नहीं मान रहा है तो उसने सारे तत्वों के बारे में गड़बड़ी की। इसलिए पहले क्या कहा, हेय तथा उपादेय तत्व का निर्णय करना चाहिए। दिव्य ध्वनि सार लाया ये किताब नहीं है, कोई बात अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, पहले प्रश्न, यह समझ कर हमें क्या करना चाहिए? तो हेय स्वभाव क्या है उसका पहले से ही निर्णय करना, हे यानी क्या और उपाधि यानी क्या, ये तो बात बतानी नहीं पड़ेगी ना, हाँ बतानी पड़ेगी। लीलाबेन बोलो, हे एटले क्या, हाँ हाँ मनीषा बेन सही बताया उन्होंने, क्या बताया फिर से बोलना, हाँ और उपाधि यानी, कोई बात पहले ये समझाइए कि इन्होंने सही बताया क्या नहीं। हाँ लता बेन बोलना चाहते हैं, हाँ सही बताया चाहे, हाँ फिर से बोलो आप, हाँ और आपने क्या बोला उल्टा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपको आदत नहीं ना रोज शास्त्राभ्यास करने की, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ये थोड़ी नहीं है, ये तो संसार में अनंत काल रखड़ने की शिक्षा होने वाली है, शिक्षा यानी सजा, सॉरी ये शिक्षा यानी शिखामण, ये बात नहीं है। तो ये तो मूल में भूल है बहन, कि हमें जिसका त्याग करना है उसे हम उपाधि माने यानी ग्रहण करने योग्य माने तो हम जाना चाहते हैं पूरब में, जा रहे हैं अन्य दिशा में, ऐसी गड़बड़ होगी। क्या कह रहे देखो, हेय तत्व याने त्याज्य, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य और ग्रहण करने उपाधे याने ग्रहण करने योग्य, आश्रय करने योग्य, आदरने योग्य, जो भी आता हो प्रकट करने योग्य, सबसे बढ़िया। अब क्या कहते हैं, हेय स्वभाव क्या है उसका पहले से ही निर्णय करना, मुनि कैसे होते हैं और वे क्या कहते हैं उसकी प्रतीति करना। देखो मैं आप सबकी माफी मांगता हूं फिर से कि मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं हमेशा, लेकिन क्या करूं, ये जैसा अभी वो फेविकॉल जैसा ऐसा गल ना तो उसको मछली पकड़ के आती है, वैसे मैं प्रश्न पूछूं तो कोई ना कोई तो हमें मिलता ही है कि जिसको उस बात का पता नहीं। हाँ ये मालूम नहीं है, ये क्या है, ये चाहिए स्वभाव नहीं चाहिए। ये का स्वभाव क्या है, ऐसा हो सकता है स्वभाव जो होता है वो त्याज्य नहीं होता ऐसा कह रही है, लेकिन ये का स्वभाव क्या है ऐसा लिखे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी गड़बड़ नहीं होगी। ये का स्वरूप कहो, ये का चाहिए ना, बीच में का चाहिए, ये स्वभाव हे कभी स्वभाव रूप से होता ही नहीं, हे ये का लिखो, चलो चलेगा, हे ये का स्वभाव क्या है, एक का डालो ना बीच में गड़बड़ क्यों। मुनि कैसे होते हैं और वे क्या कहते हैं उसकी प्रतीति करना। अब आप कहेंगे ये बीच में हे ये उपाधि की बात नहीं, मुनि को क्यों लिया, मुनि कैसे होते हैं, लेकिन इन सातों ही तत्वों में देव गुरु और शास्त्र का स्वरूप भी छुपा हुआ है। अब ये अपना अभी विषय नहीं है, नहीं तो ये हमने बहुत बार ये भी प्रूव कर लिया है कि इसमें सात तत्वों की श्रद्धा में देवगुरुओं की, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा कैसे छुपी हुई है। आप सात तत्वों की श्रद्धा कहो या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा कहो, दोनों एक ही है, ये बात हमने बहुत बार यहाँ हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि मुनि यानी कौन हो गए, ये गुरु देव गुरु में से कैसे होते हैं और वे क्या कहते हैं उसकी प्रतीति करना। मोक्ष आदरणीय है, वह उपादेय है, अभी उपादेय का अर्थ लग गया ना मैंने, प्रकट करने योग्य है, अन्य कुछ भी आदरणीय नहीं है, अर्थात वह सभी हेय है, मोक्ष मार्ग का आश्रय है, अन्य का आश्रय नहीं है, इस प्रकार बात कही है। श्री अमृत चंद्र आचार्य ने कुंदकुंदा आचार्य की पहचान कराई है, वे प्रवचन सार के निमित्त करता है, इसलिए पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण जानना। क्या कहते हैं यहाँ कुंदकुंदा आचार्य का कैसा स्वरूप है वो पहले हमें समझाते हैं, और वे जब हमें आदरणीय लगते हैं कि तो फिर हम उनको अनुसरण करें या उनका जो कहना है वो प्रमाण माने, क्योंकि कहने वाला प्रामाणिक होवे तो उनके वचन भी प्रमाण होंगे। इसलिए कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य ने कुंदकुंद आचार्य देव की पहचान कराई है, वे प्रवचन सार के निमित्त करता है, इसलिए पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण जानना। जैसे हम पहले सर्वज्ञ का स्वरूप जानते हैं, स्वरूप कैसे है वे, तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उनसे कही हुई बात कोई भी अहितकर नहीं हो सकती, हित के लिए ही कहेंगे, आत्महित की ही बात कहेंगे, ऐसा जब हमें विश्वास होता है तो वो जो भी बात उनके द्वारा कही गई है उसे हम प्रमाण मानते हैं। उसी तरह यह कुंदकुंद आचार्य देव की यानी गुरु की यहाँ पहचान कराई है, और वह जो पुरुष जो है, मतलब वह जो स्वयं है, वह तो कैसे है प्रमाण कह रहे हैं, इसलिए प्रमाण व्यक्ति है, पुरुष है, आत्मा है, तो उनके वचन भी वैसे ही होंगे, यह बताना चाहते हैं। वाणी में आए हुए सम्यक भावों को समझकर प्रतीति करना चाहिए,
किंतु अन्य प्रतीति करना योग्य नहीं है। मूल गाथा में प्रथम महावीर भगवान को स्मरण किया है, अंतिम तीर्थंकर होने से उनका निकट उपकार वर्तता है। देखो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई है, यहाँ ये कह रहे हैं कि अभी तो भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, तो वे अंतिम तीर्थंकर हैं, तो उनका निकट उपकार, केवल इतना नहीं लिखा उनका उपकार वर्तता है। अगर उनका निकट उपकार कहते हैं तो इसका अर्थ ये भी हो गया कि इनके पहले हुए जो तीर्थंकर है उनका भी उपकार वर्तता है। तो गुरुदेव एक एक शब्द रखते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत मतलब माल भरा है। क्या कहा देखो कि भगवान अंतिम तीर्थंकर होने से उनका निकट उपकार वर्तता है, बाकी उनका तो वर्तता ही है लेकिन वो एकदम इमीडिएट हमारे नजदीक है ना, इसलिए यह ज्ञान प्रधान कथन है। सामान्य रूप से तथा प्रत्येक को पृथक पृथक रूप से वंदन करता हूँ ऐसा कहकर उनके उपकार का वर्णन करते हैं। देखो हमने तो खाली नमस्कार कर लिया और भूल गए, भीम कह रहे हैं उनके उपकार का स्मरण कर रहे हैं। वंदन करने वाले श्री कुंदकुंदाचार्य कैसे हैं? मैं ज्ञान के वेदन से प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप हूँ, यानी उनको स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव हो रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का वेदन मुझे हो रहा है, ऐसे वो वेदन भी कैसा है? प्रत्यक्ष। और क्या क्या वेदन हो रहा है कि ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप मैं हूँ, ऐसा ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, ऐसा उन्हें प्रत्यक्ष वेदन जो हो रहा है ऐसे वे हैं। इस प्रकार स्पष्ट प्रत्यक्ष स्व संवेदन सहित मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि कर रहे हैं। टीका पर प्रवचन। वंदन करने वाले कौन हैं? वंदन करने वाले तथा ग्रंथ करने वाले कौन हैं? यह स्वयं प्रसिद्ध करते हैं। श्री कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो प्रवचन सार में निमित्त अपने पहचान कराने के लिए जिन्हें कर्ता कहा जाता है, और कैसा हूँ मैं कि स्वानुभूति से प्रत्यक्ष हूँ, मेरे दर्शन ज्ञान से ही प्रत्यक्ष हूँ, निमित्त और व्यवहार से प्रत्यक्ष हो ऐसा मैं नहीं हूँ। यानी वो कहते हैं कि मेरी पहचान तो मैं उसका लेखक हूँ ये वगैरह नहीं, तो मेरी पहचान क्या है, तो मैं तो ज्ञान दर्शन से प्रत्यक्ष हूँ। एकाग्रता रूप निश्चय वंदन से मैं प्रत्यक्ष हूँ तथा नित्य दर्शन ज्ञान सामान्य चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं राग रूप जड़ रूप नहीं, 28 मूलगुण स्वरूप भी नहीं। ये किसकी बात हो रही है? मुनि कुंदकुंदाचार्य के बारे में कहने में आ रहा है। वे स्वयं कहते हैं और हम भी उनका स्वरूप समझ सकते हैं कि वे राग रूप, यानी जो उनमें 28 मूलगुण पालन करने का जो राग उत्पन्न हो रहा है, शास्त्र लिखने का जो राग उत्पन्न हो रहा है, उस रूप में नहीं हूँ। और क्या कहते हैं? जड़ स्वरूप नहीं, यानी उनके साथ में जो एक क्षेत्राव का संबंध से वर्तता हुआ जो शरीर है, कारवाण वर्गणा है, तेजस है वगैरह, तेजस शरीर है, कारवाण शरीर है, इनसे भी मैं भिन्न हूँ, जड़ स्वरूप नहीं हूँ। और आगे कहते हैं उसका दूसरा भी अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं कि निश्चय से राग को भी जड़ कहा जाता है, पौद्गलिक कहा जाता है, तो उस रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो एक लाइन में आ जाएगा, मैं राग रूप जड़ स्वरूप, यानी राग को ही जड़ कहा, 28 मूलगुण स्वरूप भी नहीं, ऐसा मैं ऐसा हूँ, ऐसे तुम भी हो तथा ऐसे अपने अनुभव से प्रवचन सार को करता हूँ। भगवान कहते हैं इसलिए कहना चाहिए, ऐसा न कहकर अपने अनुभव प्रमाण से कहते हैं। यानी जैसा हम कभी कभी कुछ बात हो तो भाई ये शास्त्र में ऐसा लिखा है आप पढ़ लेना, हम अपनी घर की बात नहीं बोल रहे, ऐसा कोई कहे वहां तो वे कहते हैं कि हमने स्वयं ऐसा अनुभव किया है,
केवल भगवान ने बताया ऐसी बात नहीं है। भगवान ने जो बात बताई वो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और अब हम कह रहे हैं। क्या कहा देखो दूसरी लाइन है, तथा ऐसे अपने अनुभव से प्रवचन का प्रवचन सार को कहता हूं। भगवान कहते हैं इसलिए कहना चाहिए, ऐसा न कहकर अपने अनुभव प्रमाण से कहते हैं। इस प्रकार मैं शब्द में से टीका किया है कि मैं आत्मा हूं। अंतर ज्ञान दर्शन शक्ति को वर्तमान पर्याय में व्यक्त करके प्रत्यक्ष हूं, ऐसा मैं दर्शन स्वरूप हूं। नवतत्व में दर्शन ज्ञान स्वरूप हूं। नवतत्व में यह जीव तत्व है, ऐसा आत्मा हूं। किंतु इस समय शास्त्र संबंधी शुभराग उठा है, इसलिए भगवान को व्यवहार नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर तीन लोक के देवों से पूजित है, इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट गुरु है। ये उनका नाम भी अरहत है ना, अरहत। तो अरहत का अर्थ ही ऐसे तीन लोक में जो पूज्य है, तीन लोगों के द्वारा वो पूजित है, उनको अरहत कहते हैं। अब जिन्हें नमस्कार करते हैं वे भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं देवों के इंद्र, नीचे भवनवासी देवों के इंद्र, यानी देवों के इंद्र यानी कल्पवासी विमानवासी जो देव है उनकी बात कह रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, माइक वापस।
देवों के इंद्र लिखा है ना, उसके बाद कॉमा लिखना, नहीं तो इंद्र नीचे भवन वासी देवों के इंद्र ऐसा अर्थ नहीं लगेगा। नहीं तो
देवों के इंद्र कॉमा नीचे भवनवासी देवों के इंद्र और नरेंद्रों से वर्धमान भगवान वंदित है, तीन लोक के बड़े पुरुषों से वंदित है, इसलिए भगवान महावीर तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट गुरु है, अनन्य परम गुरु है। उनके जैसा जो महान हो वे सभी इसमें आ जाते हैं, अन्य कोई भी परम गुरु नहीं है। ऐसे महान पुरुष वंदन करने लायक होने से तीन लोक में परम गुरु है, उनके सिवाय अन्य गुरु नहीं है। भगवान अंतर स्थिर हुए, इसलिए भगवान ने राग द्वेष का नाश किया और घाती कर्म का नाश किया है, ऐसा कहने में आता है। देखो पहले निश्चय बताया, क्या बताया कि भगवान अंतर स्थिर हुए यानी अपने स्वरूप में एकाग्र हुए, अपने स्वरूप में जम गए, रम गए, स्थित हो गए। और इसलिए क्या हुआ कि उनके कोई राग द्वेष रहा ही नहीं, इसलिए क्या कहा कि भगवान ने राग द्वेष का नाश किया, ऐसा कहा। और कहते हैं घाती कर्म का नाश किया, ये सब उपचार से ऐसा कहने में आता है, लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या किया तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। तथा भगवान महावीर कैसे हैं? जिन्होंने घाती कर्म मल को धो डाला है, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए यह कथन किया है, उन्होंने स्वभाव का पूर्ण स्वरूप का भान और शुद्धोपयोग रूप स्थिरता द्वारा भाव कर्म का नाश किया है, जिससे स्वयमेव द्रव्य कर्म का नाश हो गया है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं। यहाँ निमित्त कौन है और नैमित्तिक क्या है बताओ, कौन बताएगा? हाँ बोलो डॉक्टर साहब। कल संडे पर आई क्या चित्रा जी? हाँ बोलो, आप बोलो। देखो मैं फिर से पढ़ा। हाँ हाँ, घाती कर्म नाश। देखो नैमित्तिक यानी क्या पहले हम नक्की करते हैं। नैमित्तिक यानी जो कार्य हुआ वह नैमित्तिक, और वो कार्य में जो निमित्त था वह निमित्त,
तो यहाँ दो कार्य हुए वैसे देखा जाए तो कौन कौन से, घाती कर्म का नष्ट होना यह भी एक कार्य हुआ, सुनो, और यहाँ आत्मा में स्थिरता हुई, भगवान के आत्मा में स्थिरता हुई यह एक कार्य हुआ। तो अभी हम दोनों तरफ से लगा सकते हैं कि जब यह भगवान अपने स्वरूप में एकाग्रता करते हैं वह कार्य हुआ, वह निमित्त रूप से वह सारे हट गए। या अभी राग द्वेष तो पहले से गए इसलिए उसको लेना नहीं, क्योंकि बारहवें गुणस्थान में मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है। हमें अब क्या हुआ, जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ से देखते हैं, तब यहाँ घाती कर्म का नष्ट होना यह कार्य हुआ और उसका निमित्त कौन है, तो स्वरूप में उनकी लीनता। इस तरह किसी को एक को मुख्य करके हम कह सकते हैं, लेकिन एक ही बात कहो तब भी बहुत है। किसको? हाँ देखो देखो, अभी वो आपका अभी यहाँ क्या हो गए कि भगवान ने घाती कर्म मल को धो डाला, ऐसा करा ना, तो वो अभी हम जरा थोड़ा सा करना नहीं का अभ्यास अपना है, तो हम देख सकते हैं कि बारहवें गुणस्थान में मोहनी खत्म हो गया, जब ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि है, अब सबको मिलाकर आप बात कहो तो दोनों बातें उसमें आ सकती है। तो यहाँ तो हमने घाती कर्म को ही नष्ट करा दिया पहले, इसलिए यहाँ भाव कर्म को गौण कर दिया, क्योंकि घाती कर्म में चारों आते हैं ना, इसलिए। कहाँ हो गया? हाँ हाँ, देखो देखो, अभी ये थोड़ा सा विषयांतर है, फिर भी आपको थोड़ा सा उसमें संदेह है इसलिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ दो बातें होती हैं, यहाँ उपादान क्या है, उपादान कारण कौन सा है कि जीव में जो मतलब अंतरंग में स्थिरता, चारित्र गुण की अपेक्षा से बात कर रहे, यहाँ तो सारी बातें होंगी कि दर्शन ज्ञान भी होगा, दर्शन भी होगा, चारित्र भी होगा, सब होगा, लेकिन हम यहाँ केवल आत्मा में स्थिरता की अपेक्षा से लेंगे। तो यहाँ आत्मा में
यहाँ तो घाती कर्म का नाश किया ये कार्य हुआ ना, यहाँ की बात कर रहे हैं।
यहाँ तो बात है, वो तो निमित्त का कथन है ना, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, ऐसी बात बताइए, तो आप क्या कहना चाहते हैं?
देखो, घाती कर्म का नाश हुआ ये कार्य हुआ और महावीर भगवान को निमित्त कहा,
वही तो बात बता दी ना अभी हमने,
वो हो गई।
अभी आप क्या कहना चाहते हैं?
वो तो हो गया, आप दूसरी बात कहना चाहते हैं।
अच्छा, करो करो।
नहीं नहीं, आप अभी दूसरी बात कह रहे हैं।
मैं ये कह रहा था कि उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा लगाना,
आगे की बात कर रहे
हैं। नहीं नहीं, ये विषय से लगता नहीं है, अभी अपना जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा घोटाला हो रहा है इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी बात पक्की मालूम हो तो मेरा कहना गलत हो जावे, लेकिन नहीं मालूम हो तो अच्छा हो जावे। देखो अभी क्या होता है, उपादान उपादेय ऐसा एक संबंध है, वह शास्त्र में हमेशा आता है, उपादान उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये दो बातें हमेशा आती है। अभी देखो हम ऐसा यहाँ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ घड़ा बना, मिट्टी का घड़ा बना, ये घड़ा बना तो वो काहे में से घड़ा बना, ऐसा प्रश्न आएगा, तो क्या होगा इंदुबेन? मिट्टी में से घड़ा बना, तो मिट्टी यह उपादान कारण है और घड़ा बना यह कार्य है, क्योंकि अन्य लकड़ी में से या अन्य कोई अन्य वस्तु में से घड़ा नहीं बने है, वह तो मिट्टी में से बना, तो यहाँ मिट्टी को उपादान कारण कहेंगे और घड़ा बना यह जो कार्य हुआ उस कार्य को उपादेय कहेंगे। अभी जो हमने उपाधेय का अर्थ देखा था ना, कौन सा? हाँ, यानी ग्रहण करना, वो नहीं लेना, उपादेय का अर्थ यहाँ कार्य हुआ ऐसा लेना। अब यहाँ कार्य क्या हुआ, तो घड़ा बना, तो उसमें निमित्त कौन है? तो कुम्हार। यहाँ हमने त्रिकाली उपादान मिट्टी लिया और यहाँ उपाधेय वो कार्य लिया, अब यहाँ उसका निमित्त कारण कौन है? तो कुम्हार। तो कुम्हार निमित्त है, तो यहाँ सामने नैमित्तिक यानी कार्य कौन सा हुआ? तो घड़ा हुआ। अभी कार्य तो एक ही है, घड़ा बना यह कार्य है, लेकिन उसको उपादान कारण और निमित्त कारण इस दोनों की अपेक्षा से हम देखते हैं तो उस कार्य के ही दो नाम हो जाते हैं। कार्य हुआ है एक, लेकिन उसको दो नाम उपादान की अपेक्षा से देखते हैं तो इसी घड़ा बना इस कार्य को उपादेय कहेंगे, और जब निमित्त की अपेक्षा से उसको देखते हैं तो निमित्त कुमार है, तो जो कार्य हुआ उसको निमित्त कहेंगे। एक ही कार्य को उपादेय और नैमित्तिक ऐसा नाम आएगा। मनीषा बहन को नहीं आए, कोई बात नहीं, आज शांति से सुन ना, आगे कभी बात निकलेगी। यानी कार्य तो एक ही हुआ है। कर्म में घटाइए तो धाती कर्म जो नष्ट हुए यह कार्य हुआ, तो घाती कर्म जो नष्ट हुए उसका त्रिकाली कारण कौन होगा, मतलब उसका उपादान कारण कौन होगा। तो अभी हम इस समय की पर्याय नहीं लेंगे, तत्समय की पर्याय की योग्यता न लेते हुए वो कर्म लेंगे, कर्मों की यह अवस्था हुई।
उपादान शुद्ध उपयोग कह रहे हैं,
कौन कह रहे हैं? नहीं नहीं बात देखो, अभी बहुत अच्छा हो गया आपने बोला, किसी ने बोला? मैंने तो नहीं सुना, आपने बोला क्या? आपने बोला? हाँ देखो देखो देखो, पहले एक अपना एक स्लोगन, हमारे पास तो ऐसे बहुत स्लोगन है, अब मेरी भाषा में कहो तो तावीज। अच्छा देखो, उपादान उपादेय संबंध हमेशा एक द्रव्य में ही होता है, द्रव्य का उसके पर्यायों के साथ, यानी कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में ही होता है, ऐसा उपादान उपादेय संबंध एक द्रव्य में होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों में होता है, ये सामान्य रूप से है। तो अगर हम शुद्धोपयोग कहेंगे तो वो कर्मों को शुद्धोपयोग करना पड़ेगा।
देखो शुद्धोपयोग जीव द्रव्य में है और वो कर्म नष्ट हुआ, यानी कर्म कारमाण वर्गणारूप हो गया, यानी जो कर्म बना था ना, कारमाण वर्गणा से कर्म बना था, अभी कर्म से फिर अकर्म हुआ, यानी वो जो घटना घटी वो पुद्गल में ही हुई है, तो उसका कर्ता कौन है, उपादान कौन है? कर्म स्वयं, कर्म स्वयं अकर्म रूप हो गया ना, नष्ट हुआ यानी क्या हुआ, वो अकर्म रूप हो गया, पुद्गल तो पुद्गल ही रह गया वहाँ, उसकी अवस्था बदली,
पुद्गल की अवस्था बदली, कारमाण वर्गणा की कर्म रूप जो हुई थी वो अवस्था बदल कर अकर्म रूप हुई, तो उपादान है कर्म, उपादान कारण, और उसका उपाधेय है अकर्म रूप होना,
क्षय हुआ तो
घाती कर्म नष्ट हुआ अपनी भाषा में सबसे साथ। अब यहाँ घाती कर्म नष्ट हुआ यह कार्य जो हुआ है उसमें निमित्त कौन है, तो जीव का शुद्ध उपयोग, या वहाँ तीर्थंकर जो होते हैं उनके, तो वो निमित्त, और यही जो कर्म नष्ट हुए वो नैमित्त, तो एक ही कर्म नष्ट हुए इस कार्य को दो नाम दिए गए, एक उपादेय और एक नैमित्तिक।
अब शुद्धोपयोग के ऊपर उपादान उपादेय लगाओ।
हाँ
शुद्धोपयोग ही कार्य है ना, पर्याय है क्या, द्रव्य है क्या, गुण है क्या, है शुद्धोपयोग पर्याय है, तभी उस पर उपादान घटा।
हाँ दो एक मिनट, देवेंद्र भाई लगाएंगे, सत्य आए हो भैया? हाँ बोलो बोलो, शुद्धोपयोग हुआ। हाँ
निमित्त नहीं लगा,
बोलने दो, शुद्धोपयोग हुआ इसके ऊपर उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्त घटाओ।
ठीक है, यानी थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर भी आपको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी नींद लग रही है इसलिए मैंने आपको जगाया। हाँ, क्योंकि क्या है, लोगों को पीछे से टेका मिले तो अच्छा लगता है बैठने को, क्या मालूम मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि सामने बैठने को सब लोग कचराते हैं, टेक के बैठने में आराम लगता है। आज आप थक गए मैं समझ सकता हूँ, रोज आप ऐसा नहीं करते हो मैं समझता हूँ, फिर भी मेरी ड्यूटी है, डबल ड्यूटी, सुनाना और जगाना है। जागते हो, हमारे सर थे, सर इन द सेंस ये प्रवचन का, वो बोलते थे अरे पड़ोसी का ख्याल रखो, लव द नेबर, कि पड़ोसी सोता नहीं उसको जगाओ, ऐसा बोलते थे। क्योंकि हमें उनके प्रति प्रेम रहना चाहिए, मित्र है अपना और पड़ोसी है, तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी लगती है। बोले चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ आपने क्या कहा, दूसरे कौन कहेगा, इंदु बेन आप कहेंगे क्या क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, शुद्धोपयोग रूप जो कार्य हुआ उसमें उपादान कारण कौन है? बहुत अच्छा, जीव द्रव्य का चारित्र गुण। हाँ साथी कर्म का दर्शन होने का नाश हो जाए। हाँ। और यहाँ नैमित्त क्या हुआ? शुद्धोपयोग शॉर्ट में आ गया सब बात। हाँ? आप अंतरंग निमित्त में गए कोई बात नहीं हाँ बेटा, शुद्धोपयोग थे उपाधि और चारित्र गुण का सम्यक, चारित्र गुण वह उपादान कारण।
संडे को आना, ये यही विषय चल रहा है।
नहीं संडे को आना वो बच्चों का काम है,
कुछ
बोलना ही नहीं, बोल के अपने दांत गिर जाएंगे। लोगों को ऐसा ही लगता है कि संडे में मजाक चलती होगी, ठीक है। हाँ थोड़े दिन रहेगा बेटा, चलो कहाँ थे हम? तथा भगवान महावीर कैसे हैं, यहाँ से बात निकली थी ना, जिन्होंने जाति कर्म मल को धो डाला, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन किया है, यानी कर्म का कर्म में जो अवस्थान्तर हुआ वह उनका उपादान और उपाधि अलग है, वहाँ जीव के फिरता है वह अच्छी बात है, तो जाति कर्म को धो डाला ऐसा कहना यह निमित्त का कथन है। उन्होंने स्वभाव का यानी पूर्ण स्वरूप का भान और शुद्धोपयोग रूप स्थिरता द्वारा भाव कर्म का नाश किया है, जिससे स्वयमेव द्रव्य कर्म का नाश हो गया है। इन्होंने दोनों साथ में लिया, जाति कर्मों में सब ले लिया। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, समय सार की 34वीं गाथा में कहा है कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें ठहर जाना वह प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का अर्थ समझते हैं ना आप लोग? हाँ त्याग, बरोबर, प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। क्या कह रहे हैं? उन्होंने काय का त्याग किया, तो कहते हैं राग द्वेष का त्याग किया। देखो अभी आपको तो ये बहुत अच्छा स्लोगन है, याद है कि नहीं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो ज्ञान काहे का ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप में एकाग्र हो गए तो बाकी पांच पापों का त्याग हो गया, इच्छात्व का त्याग किसका नहीं हुआ, राग द्वेष का त्याग हो गया, तो यही प्रत्याख्यान है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें ठहर जाना वह प्रत्याख्यान है। राग का क्या करे ऐसा प्रश्न है, राग का त्याग करना यह कहना वह नाम मात्र है। यहाँ समय सार में दर्शन यानी श्रद्धा प्रधान कथन है, इसलिए राग को दूर कहते हैं, राग को दूर करते हैं यह उपचार है ऐसा कहा है। यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, इसलिए यहाँ घाती कर्म मल को धो डाला है ऐसा कहा। वास्तव में हाथी कर्म तो जड़ है, आत्मा उनका नाश नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा राग का भी नाश नहीं कर सकता, किंतु जहाँ ज्ञान स्वभाव में लीन होता है वहाँ राग उत्पन्न नहीं होता, राग दूर हो जाता है और द्रव्य कर्म स्वयं छूट जाते हैं। ज्ञान ने तो मात्र जाना कि राग के दूर होने पर द्रव्य कर्म सहज ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जहाँ निमित्त ही हुआ है वह निमित्त चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, तथा कर्मों को धो डाला है अर्थात उन्होंने एक भी कर्म को नहीं रहने दिया है। यहाँ मात्र इतनी यह अपेक्षा समझना चाहिए, ज्ञान जो है उसे जाने अथवा जो होगा उसे जाने। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझे? अच्छा, क्या नहीं समझे आप? बोलिए बोलिए, मराठी में बोलिए आप। हाँ, कौन सी बात समझ में नहीं आई? राग को, हाँ बरोबर, आपका ये पूछना है कि इन्होंने राग को दूर किया, इसको उपचार कथन क्यों कहा है, ऐसा ही है ना आपका प्रश्न? बात ऐसी है, देखो राग यह क्या है पहले हम सोचते हैं, यानी राग है वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, ऐसा पहले हम नक्की करेंगे ना। तो आप क्या कहेंगे लीलाबेन, राग को द्रव्य कहेंगे, गुण कहेंगे, क्या कहेंगे? द्रव्य, बहुत अच्छा। हाँ, आप क्या कहते हैं? पर्याय, कैसी पर्याय है वह? बहुत अच्छा। देखो पहले हम देखते हैं राग जो है, यानी राग यानी इसमें राग द्वेष दोनों लेना, क्रोध मान माया लोभ सब लेना, 25 कषाय वो सब लेना, हा? तो ये क्या है? जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। अब विभाव पर्याय यानी क्या? राग करना। राग यानी यहाँ हम शुभ राग लेते हैं, बाकी अन्य को हटा कर। तो शुभ राग कर, अभी हम जब सोचते हैं तो पहला क्या सोचते हैं? अशुभ राग करना अच्छा नहीं है, शुभ राग करो तो ठीक है, लेकिन शुभ राग अच्छा, अशुभ राग नहीं करना। यानी मैं शुभ राग कर सकता हूँ और मैं अशुभ राग कर सकता हूँ, ऐसे इस जीव की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता है। क्यों? अब हम उसको तराशते हैं, मतलब उसको खोजते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो पाप क्रिया जो आपसे होती है वो आप जानबूझकर करते हैं या कैसा होता है? पाप की क्रिया कुछ तो नहीं होती होगी कि नहीं, तो जानबूझकर करते हैं ना? हाँ हाँ, कभी जानबूझकर करते हैं और कभी अपने आप हो जाता है। वास्तव में ये सारे ऐसे अपने आप ही होते हैं, कोई जानबूझकर नहीं करता है। क्योंकि देखो वैसे शुभ राग जो है वह भी सहज आता है, अभी हमको देख देख कर शुभ राग करना, सोच सोच कर शुभ राग करना, ऐसा जो जीव मानता है वह वास्तविकता सही बात नहीं है। क्यों? यहीं पर हमको आना है। इसलिए कहते हैं कि यह विभाव भाव है ना, तो विभाव भाव करना अगर मेरे हाथ की बात है, वह मेरा स्वभाव रहेगा तो ही मैं कर पाऊंगा ना। विभाव करना यह मेरा स्वभाव है तो यह जीव वितरा कब होगा? क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं, कोई जब वो कभी हटता ही नहीं है, दूर होता ही नहीं है, तो विभाव करना यह अपना स्वभाव मानेंगे हम, तो ये बात कतई साबित नहीं हो सकेगी कि आज तक अनंत सिद्ध वितराग हुए हैं, तीर्थंकर सिद्ध वितराग हुए हैं और मुनिराज भी आंशिक वितराग हुए, तो राग को दूर किए बिना हुए हैं क्या? तो अब बात ऐसी कि राग को दूर करना तो इसका काम नहीं कह रहे, ऐसा आपका कहना है ना? तो बात तो ऐसी है कि जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होती है, क्योंकि यह छद्मस्थ जीवों का ऐसा ही मतलब नेचर है कहो कि एक समय वह यह शुद्धोपयोग करेगा या अशुद्धोपयोग करेगा। अशुद्धोपयोग में शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये दोनों आते हैं। जब वो शुभोपयोग करे तो अशुभोपयोग नहीं करता है, जिस समय अशुभोपयोग करे उस समय शुभोपयोग नहीं करता है। इसको दोनों को मिलकर अशुद्धोपयोग नाम है। तो जब अशुद्धोपयोग करता है तब शुद्धोपयोग नहीं करता है, और जब शुद्धोपयोग करता है तब अशुद्धोपयोग नहीं करता है। ये छद्मस्थ यानी पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्थ कहते हैं। अब क्या बात हुई कि जब यह शुद्धोपयोग कर रहा है जी, तब उसमें राग द्वेष यानी अशुद्धोपयोग उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, तब क्या कहेंगे कि उन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया, उनको हटा दिया। हटा दिया यानी उनको तो हटा सकते ही नहीं, ये तो स्वरूप में लीनता हो गई तो वो उत्पन्न ही नहीं हुए। इस अर्थ है जो पहले कर्म बांधे थे वो भी निर्जरित हो गए। तो उन्होंने राग द्वेष को हटाया, राग द्वेष को दूर किया। उपदेश भी ऐसा ही देंगे कि आप राग द्वेष कम करो, कम करो कहने से कम नहीं होते हैं। राग करना नहीं तो उसके प्रति द्वेष चालू हो गया। चल रहा तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको दूर हटाने का एकमेव उपाय यही है कि जब यह जीव अपने स्वरूप में स्थिरता करता है, यानी चारित्र गुण का स्वभाव परिणमन जब चालू होता है तब विभाव परिणमन होगा ही नहीं। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया, हा? समझ गया, बहुत अच्छा। नहीं समझे तो पूछना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं मानना। जरा जोर से बोलना बेंगे।
मैंने ज्ञान क्या करता है, जो है उसको जानता है और जो होगा उसको भी जानता है।
देखो
ज्ञान का स्वरूप ही है ना,
स्व पर प्रकाशक है। यानी वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान जो है उसे जाने, यानी ज्ञान जो है उसको जान रहा है और जो हो रहा है उसको भी जान रहा है। अभी जो है में अपन स्वयं आएगा कि नहीं, वो जो है
उसमें उपादान को भी जानेगा, निमित्त को भी जानेगा, सबको जानेगा। ठीक है, ये जो अभी पहले प्रश्न पूछा था ना कि समय सार में तो श्रद्धा प्रधान कथन है, दर्शन प्रधान कहो या श्रद्धा प्रधान कहो, वहाँ स्वभाव की मुख्यता से बात की जाती है। वहाँ निमित्त का जो कथन है उसको उपचार कहने में आता है। आपका प्रश्न था ना अभी कि ये उपचार क्यों कहा, क्योंकि वो यानी राग को दूर करना या राग को करना, ये दोनों ही स्वभाव में नहीं है। ये दर्शन प्रधान कथन है, यानी वहाँ स्वभाव जो ज्ञान दर्शन में जो स्वभाव है उसी का स्वीकार होता है, और राग आदि को फिर दूर किया ये भी उपचार हुआ। परंतु यहाँ प्रवचन सार में भगवान ने घाती कर्म को धो डाला, राग की तो बात ही नहीं की, राग को भी धो डाला और घाती कर्म को भी धो डाला, यानी परद्रव्य की भी क्रिया की ऐसा कहने में आता है। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान तो दोनों को जानेगा, शुद्धोपयोग हुआ उसको भी जानेगा, भाव कर्म पूरा नाश हुआ उसको भी जानेगा, और वहाँ उसी समय द्रव्य कर्म का भी पूरा नाश हुआ उसको भी जानेगा। और ज्ञान ये तीनों का ही कथन उसमें आएगा, ज्ञान की अपेक्षा से कथन होगा तो तीनों बातें आएगी उसमें। तो कहेंगे कैसे कि भगवान ने घाती कर्म को नाश किया, भगवान ने राग का नाश किया, और ये निमित्त का कथन है, ये हमें निर्णय करना चाहिए।
देखो बात ऐसी है, यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है ना, तो ज्ञान किसको नहीं जानेगा, सबको जानेगा। तो वहाँ श्रद्धा प्रधान कथन था, तो वहाँ तो सिर्फ जीव द्रव्य की श्रद्धा की दृष्टि की अपेक्षा से, यानी कृताली स्वभाव की अपेक्षा से वहाँ बात करती थी। अब स्वभाव की अपेक्षा से जब बात कहेंगे तब जीव के स्वभाव में राग द्वेष करना उसका स्वभाव नहीं है ऐसा कहेंगे। अब ज्ञान प्रधान में कहेंगे कि जीव जो राग कर रहा है उसको जान रहा है, उसको निमित्त कौन है तो फला फला कर्म निमित्त है। ज्ञान क्या नहीं जानेगा, ज्ञान तो भी जानेगा और पर भी जानेगा। तो यहाँ तो ज्ञान प्रधान कथन है ना, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान जो है उसे, यानी इसमें आप स्वयं को भी लेना, ज्ञान जो स्वयं है उसे, यानी जो वर्तमान काल में चल रहा है उसे, जो भी आप जैसा ले जाने, अथवा जो होगा उसे जाने, यानी जो आसपास में परद्रव्य में जो हो रहा है या जो भविष्य में होने वाला है उसको जाने, ऐसी बात उसमें आप ले सकते हैं। यही तो गड़बड़ है, क्योंकि हमें तो मतलब विशेष रूप से समय सार का अभ्यास होने से ये ज्ञान प्रदान कथन कुछ जुदा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जानेगा, वो तो स्वभाव को भी जानेगा, यानी जहाँ उपादान का कार्य हो रहा है वो भी जानेगा और निमित्त जो है उसको भी जानेगा, यानी स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। स्व पर प्रकाशक शक्ति है ना आत्मा की, तो वो ज्ञान प्रधान कथन है तो उसमें सारी बातें आएगी, सब द्रव्य गुण पर्याय सबकी बात इसमें आएगी। वहां तो दृष्टि प्रधान कथन है, दृष्टि प्रधान जिन जो त्रिकाली आत्मा का स्वभाव है उसके बारे में हम विशेष जानेंगे, उसमें राग वगैरह करना उसका स्वभाव नहीं है। वहां तो डायरेक्ट बोलेंगे अरे वो तो कुटगल का है, और यहाँ कहेंगे नहीं,
यहाँ जीव का जिसका है उसका कहना।
अभी वो आपकी बात आएगी आगे, अभी है 5-7 मिनट है, देखो देखो अब क्या कहते हैं, अपनी आत्मा की मेहरबानी हुई तो भगवान की मेहरबानी हुई ऐसा कहने में आता है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा अपने को, क्योंकि ऐसी कभी सुनने की आदत नहीं है। तो क्या कहा, अपनी आत्मा की मेहरबानी हुई, यानी जब हम अपने स्वरूप को जान रहे हैं तो सामने वाले भगवान की मेहरबानी हुई ऐसा कहने में आता है, कहने में आता है, वास्तविकता ऐसी है ऐसा नहीं बता रहे। देखो इस प्रकार भगवान ने कर्मों का नाश किया है, ऐसा होने के कारण वे जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ है, अनुग्रह यानी उपकार करने में, यानी निमित्त बनने में, उपकार यानी और कुछ नहीं समझना। आत्मा में अकार्य कारणत्व अकारण कार्यत्व शक्ति है, अकारण कार्यत्व शक्ति का अर्थ ऐसा है कि आत्मा किसी भी कार्य का कारण नहीं है। अच्छा वो तुम अलग रीत से बताए, मैं ठीक है, यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा जो है उसका कारण कोई है कि जिसके कारण की आत्मा बना है ऐसा भी नहीं है। एक बात, और मैंने क्या कहा, आत्मा परद्रव्य का कारण भी नहीं है, दूसरी बात, तीसरी बात, आत्मा अन्य किसी का कार्य भी नहीं है या अन्य किसी का कार्य करे ऐसा भी नहीं है, समझे, यानी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, या आत्मा किसी ने बनाया है, ये भगवान कोई है और उन्होंने सारी जीव चराचर बना दिया है, सृष्टि बना दी है, ऐसा नहीं। प्रत्येक मतलब आत्मा कैसा है उसमें अकारण और अकार्यत्व ऐसा लेना, अ गुरु लघु तो जैसा हम लिखते हैं ना अनादि निधन, तो इसमें अन आदि और अन निधन मतलब जिसका अनंत काल तक टिकेगा ऐसा उसका स्वभाव है, वैसा अगुरु लघु तो लिखते हैं, वैसा यहाँ अकार्य उल्टा लिखा है, अकार्य कारणत्व शक्ति, यहाँ इन्होंने अकारण कार्यत्व शक्ति लिखी, एक ही बात है, ठीक है, लेकिन हमने याद किया तो अकार्य कारणत्व शक्ति याद किया था, तो गड़बड़ी मेरी भी हो रही है। तो इससे क्या हुआ, आत्मा में अकारण और अकार्यत्व शक्ति है, यहाँ तो आत्मा की बात की है, लेकिन और आगे जाके आप पढ़ेंगे यहाँ नहीं अन्य जगह, तो यह तो एक सामान्य गुण है, क्या 6 द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए कोई भी द्रव्य पर से पर का कारण है या पर का कार्य है ऐसा हो ही नहीं सकता है, या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण है या दूसरे द्रव्य का कार्य करेगा ऐसा भी नहीं है। ये अकार्य कारणत्व शक्ति, अकारण कार्यत्व शक्ति ये सामान्य शक्ति है, लेकिन यहाँ तो अपनी आत्मा की बात चल रही ना, और 47 शक्तियां में तो ये आत्मा की ही शक्ति है ऐसा बताया है। तो जैसा उन्होंने वहां ये भी बताया कि आत्मा में एक उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, क्या आत्मा ही खाली उत्पाद वे ध्रुवात्मक है, उमा स्वामी ने तो बता दिया तत्द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, कैसा उत्पाद हुए ध्रुव उत्तम सत्य। यानी ये बहुत सारी ऐसी मतलब 47 शक्तियों में 25 के ऊपर तो सामान्य शक्तियां हैं। चल रहा है क्या कहते हैं, आत्मा में अकारण कार्यत्व शक्ति है, जिससे वह किसी का कारण नहीं, यानी आत्मा किसी का कारण नहीं है, तथा आत्मा का कोई पर्याय रूप कार्य किसी अन्य से नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान ने जाना, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध गौण हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा में है ही नहीं, ऐसा यहाँ कहते हैं। जहाँ भगवान अन्य के ऊपर मेहरबानी करते हैं, अर्थात जो जीव स्वयं की योग्यता से समझता है, तो भगवान की मेहरबानी हुई ऐसा आरोप से विनय से कहने में आता है। इस तरह भगवान की अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, परमेश्वरता यानी परमेश्वरपणा है उसमें। अब देखो, अभी जिसने आपने प्रश्न पूछा था ना भाई, देखो इसका उत्तर ही देगा। दृष्टि के कथन में भेदों को नहीं स्वीकारते, दृष्टि का यानी श्रद्धा का जो विषय है या त्रिकाली द्रव्य का जो स्वरूप है, उसमें जब हम तो देखते हैं तो दृष्टि के कथन में, यानी यहाँ द्रव्य दृष्टि के कथन में लो तो और अच्छा रहेगा। भेद को नहीं स्वीकारते, आत्मा का पर के साथ कारण कार्य संबंध नहीं है, दृष्टि अभेद को स्वीकारती है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, यहाँ ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, निर्विकल्प है, उसका विषय अभेद है। ज्ञान अभेद को जाने, भेद को जाने, शुद्ध को जाने, अशुद्ध को जाने और उपादान को जाने, निमित्त को जाने, इस प्रकार वह दोनों को जानता है। दोनों यानी क्या, अभी सब दोनों जुड़िया लगाई अभी इसमें, भेद को भी जाने अभेद को भी जाने। ये ज्ञान अभी अपना जो विषय चल रहा है, तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम का जो है, तो वहाँ ज्ञान की प्रधानता से यह कथन बता रहे हैं। अभी हमने तो बहुत सालों से समयसार का विशेष रूप से अभ्यास करने से तो दृष्टि प्रधान कथन हमारे दिमाग में बहुत फिट हो गया है। ये बात जब कहते हैं तो अरे ऐसा कैसा कह रहे हैं, अपेक्षा जुदी है। जैसा हमने आपसे पूछा कि आप मौसी हो या भांजी, तो दोनों हो सकती हैं, क्यों नहीं है? तो फिर क्या बोलते हैं, भांजियों की अपेक्षा से देखो तो मौसी है, और दूसरी अपेक्षा से देखो तो भांजी है। इस तरह से यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, तो ज्ञान में जो जो बातें दिखाई देगी या जानने में आएगी, उसी अपेक्षा से यहाँ पूरा पूरा वर्णन किया जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान अभेद को जाने, भेद को जाने, शुद्ध को जाने, अशुद्ध को जाने, उपादान को जाने, निमित्त को जाने, इस प्रकार वह दोनों को जानता है। भगवान को विकल्प टाइम होगा, विकल्प नहीं है। रावणी के ज्ञान ते सुझे लो कानो, सोवाणी मस्तकन मो सदा देखो।
बोलो गुणवाणी माता की।